दिन भर 13 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। इसराइल में एक बस पर हुए हमले में 3 इसराइलियों की मौत।
We have one terrorist that was shot and killed after he stabbed two Israeli men, both of them injured seriously, taken to hospitals. A second terrorist was shot.
जानेंगे क्या है इतना महत्व बिहार के विधानसभा चुनाव परिणाम का राष्ट्रीय राजनीति में।
तो मोदी के खिलाफ जो है एक अलाइनमेंट यहाँ जो है शुरू होगा नेशनल लेवल पर। कांग्रेस आई, यहाँ की दोनों पार्टियाँ आई, बाकी जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी अलग अलग स्टेट में जो पार्टियाँ हैं वो ग्रेविटेट होकर इस तरफ आएंगी।
चर्चा होगी कश्मीर जाने वाली मालगाड़ियों के ब्लॉकेट की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। गोलीबारी और चाकू हमलों में कम से कम 3 इजरायली मारे गए हैं और 1 दर्जन के करीब घायल हुए हैं। 2 लोगों ने पूर्वी यरूशलम में एक बस पर गोलीबारी की और यात्रियों पर चाकू हमला किया। इजरायली और फलस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ गया है और इस महीने में अब तक 1 दर्जन के करीब चाकू हमले हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। नीदरलैंड के जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बीते साल जुलाई में पूर्वी यूक्रेन में गिराए गए मलेशियाई विमान को रूस निर्मित विमानरोधी मिसाइल से निशाना बनाया गया था। नीदरलैंड्स में एक हवाई अड्डे पर बोलते हुए डच सेफ्टी बोर्ड के चेयरमैन चिब्बिया योस्ट्रा ने बताया कि फोरेंसिक सबूतों से ये साबित हुआ है कि सतह से आसमान में मार करने वाली एक बुक 6 मिसाइल बोइंग 777 विमान के कॉकपिट के पास फटी थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अपने हवाई क्षेत्र नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मलेशिया एयरलाइन की उड़ान संख्या MH17 को निशाना बनाए जाने के वक्त 3 और नागरिक विमान उस इलाके में उड़ान भर रहे थे। विमान ये मानकर उड़ान भर रहे थे कि ये ऊंचाई सुरक्षित है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री आर्सेनी येत्सेन्यूक ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने रूस समर्थक लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाके से मिसाइल दागी होगी। उन्होंने कहा, हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह मिसाइल रूस समर्थक लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाके से दागी गई थी। जाहिर है शराब के नशे में धुत अलगाववादी बुक सिस्टम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यह मिसाइल सिस्टम प्रशिक्षित रूसी सैनिकों ने चलाया था। ये थे यूक्रेन के प्रधानमंत्री आर्सेनी यात्सेन्यूक के शब्द। डच सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट के बाद नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने रूस से हादसे की आपराधिक जांच में पूरा सहयोग देने का आह्वान किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि दमिश्क में रूसी दूतावास पर हुआ मिसाइल हमला चरमपंथी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों को डराने का प्रयास है जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मंगलवार को 2 मिसाइलें दमिश्क में रूसी दूतावास पर उस वक्त गिरी जब सीरिया में रूसी हवाई हमलों के समर्थन में राष्ट्रपति बशर अल असद के सैकड़ों समर्थक वहां इकट्ठा थे। दमिश्क में बीबीसी संवाददाता के मुताबिक हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। ब्रिटानी सरकार $9 अरब के उस समझौते से पीछे हट रही है जिसके तहत उसे जेलों के संचालन में सऊदी अरब की मदद करनी थी। ब्रिटानी सरकार ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि यह कदम सऊदी अरब में एक ब्रिटानी नागरिक को 360 कोड़े मारे जाने की सजा दिए जाने से जुड़ा है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर का कहना है कि वह नौकरियों में 360 पदों की कटौती करेगी। ये ट्विटर के वैश्विक स्टाफ में 8% की कटौती होगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। इसराइल के शहर यरूशलम में एक बस पर हुए हमले के दौरान 3 इसराइली लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। इसराइली पुलिस के मुताबिक लगभग रोज हो रहे इन हमलों में दर्जनों इसराइली मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। पिछले एक पखवाड़े से लगातार बढ़ रही इस हिंसा में कई हमलावर और कम से कम 17 फलस्तीनी भी मारे गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं से मिली रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
यरूशलम के पूर्व में एक बस में 2 हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और कुछ यात्रियों पर चाकू से हमला किया। कुछ ही देर बाद एक हमलावर ने केंद्रीय यरूशलम में अपनी कार एक बस स्टॉप से भिड़ा दी और फिर वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला किया। موقع واردات پر موجود اسرائیلی پولیس کے پروکتا میکی روزنفیلڈ نے بتایا،
ایک
چرم پنتھی کو ہم نے مار دیا ہے، اس نے دو لوگوں کو گمبھیر روپ سے گھائل کر دیا تھا، دونوں ہی گھائل اسپتال میں ہیں۔ دوسرے چرم پنتھی کو بھی ہم نے گولی مار کر گھائل کر دیا۔ ہم نے اس علاقے کی گھیرا بندی کر دی ہے، فی الحال یروشلم میں سرکشا انتظام کڑے کر دیے گئے ہیں۔
ادھر تل اویو کے ایک علاقے میں ایک اور چاقو سے حملے کی واردات ہوئی۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں میں سے ایک نے اس گھٹنا کا ویڈیو لیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتھت حملہور کو آس پاس سے گزرتے لوگ پیٹ رہے ہیں۔ اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نیتانیاہو نے آج دوپہر اچانک بڑھتی ہوئی اس ہنسا پر سرکشا منترالے کی آپات بیٹھک بھی بلائی۔ یروشلم کے میئر نیر برکت نے بھی کہا کہ سرکشا کے کڑے قدم اٹھانے ہی ہوں گے۔ نیر برکت:
بیت ازو ایم צריך לעשות סגר ולהגדיל את הביטחון חד משמעית אם זה הדבר
موجودہ حالات میں سرکشا قائم رکھنے کے لیے اگر ضروری ہوا تو شہر کو بند بھی کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی میں اسرائیلی سرکار اور سرکشا بلوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سرکشا انتظامات کڑے کر دیں۔ سبھی ناگرکوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جنتا کو شانتی بنائے رکھنا چاہیے اور سرکشا بلوں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔
ابھی 15 دن پہلے ہی سنیکت راشٹر میں فلسطین کا جھنڈا پہلی بار پھہرایا گیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں نے ہی اپنا اپنا پکش بھی سنیکت راشٹر میں رکھا تھا، جہاں فلسطین ادھیکرت کھیتر کے پرمکھ کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل سے اوسلو میں ہوئے سمجھوتے کو نہیں مانیں گے کیونکہ اسرائیل لگاتار اس کا الگھن کرتا رہا ہے۔ وہیں اسرائیل کا کہنا تھا کہ فلسطین اگر راج کے طور پر مانیتا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اسرائیل سے سمواد۔ لیکن سنیکت راشٹر میں اپنی اپنی شکایتوں کو رکھنے کے بعد سمواد کی استھتی بننے کی بجائے ہنسا کی وارداتوں میں بڑھوتری ہی ہوئی ہے، اور ورشوں سے الجھے اسرائیل فلسطین مدعے کا فی الحال کسی صورت میں حل نظر نہیں آتا۔
اسرائیل میں ایک بس پر چرم پنتھی حملہ۔ بہار ودھان سبھا چناؤ کے دوسرے چرن کے لیے چناوی پرچار زوروں پر ہے۔ سبھی گٹھ بندھنوں کے کارکرتا اس دور میں ووٹروں کو رجھانے کی پوری زور آزمائش کر رہے ہیں۔ دن بھر کے چناوی دورے کے بعد شام کو تھکان دور کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ گیا میں بی بی سی سنواددتا سلمان راوی نے بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں سے چائے پر چرچا کی۔
تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے گنے کے رس کی دکان پہ چائے پلا رہے ہیں مجھے، اور آپ بھی پی رہے ہیں سب لوگ بیٹھ کر
گنے کے رس؟
یہ تو گنے کا جو ہے نا وہ ہے
کہ اے بھائی سنے نا، گنا کا رس پلا جائیں گے، یاد ہو گیا۔
گنے کے جوس پینا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی
چائے پہ چرچا کریں گے نا۔
اچھا
چائے پہ چرچا
بھائی، مودی جی کر سکتے ہیں چائے پہ چرچا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے۔
تو گول بیگھا موڑ پر آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ مدعے کیا ہیں؟ آپ عام جنتا ہیں یا پارٹی کے کارکرتا ہیں؟
ہم لوگ تو پارٹی کے کارکرتا ہی سمجھا جائے، بی جے پی سے بلانگ کرتے ہیں۔
اچھا،
اور جو گٹھ بندھن بنی ہے تو ہمارا سہیوگ کرنا تو اتردائی تو بنتا ہے۔
نہیں، وہ گٹھ بندھن ایسا تو نہیں کہ گنے کے رس کی دکان پہ چائے پی رہے ہیں؟
ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ آفس کے بغل میں ہے، گیٹ پر ہیں، چائے کی دکان ہے، تو ہم لوگ سوچا کہ
دونوں دکان ہے، چائے بھی ہے، گنے کی دکان بھی ہے۔
دونوں کا میل تو نہیں ہے؟
میل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو
دو دوپہر میں گنے کی رس، شام میں چائے،
اور رات میں
دودھ۔
تو یہ بتائیے کہ بھائی بھارتی جنتا پارٹی کے کیڈر لوگ آپ لوگ، یہ کیا مزہ آ رہا ہے چناؤ میں اس بار؟
بہت اچھا، بہت ہی انٹرسٹڈ چناؤ ہے، تو بہت ہی انٹرسٹڈ چناؤ ہے۔
پورا بہار سر مودی مے ہو گیا ہے سر، پورا بہار جو ابھی ہے جی مودی مے ہو گیا ہے۔
اور امت شاہ میں نہیں ہے؟
ایک دم امت شاہ بھی میں ہے، جب مودی میں ہے تو سر امت شاہ بھی آٹومیٹک میں ہوں گے،
مودی میں ہی سب آ گئے۔
مودی تو پردھان منتری ہیں، پارٹی کی بات جب ہوتی ہے۔
بہار کی جنتا سر نیتیش اور لالو جی کے جو ساتھ میں جو گٹھ بندھن ہوا، وہ لالو جی کے آنے سے نیتیش جی بہت پیچھے چلے گئے، اور پورا بہار واسی سر لالو جی کے ساتھ میں آنے سے نیتیش جی کو بھائی بھائی بھی تھے ایک دم۔
تو سنا آپ نے، بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ حالانکہ کسی خاص چہرے کو راجیہ سے سامنے کر کے چناؤ نہیں لڑا جا رہا ہے، لیکن اس چناؤ میں نریندر مودی کی جو چھوی ہے اس کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی میدان میں ہے۔ سلمان راوی، بی بی سی، گیا۔
بہار میں ہو رہے ودھان سبھا چناؤ پر پورے بھارت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ इन चुनाव परिणाम का देश की भावी राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार में होने वाले चुनाव का क्या महत्व है, बता रहे हैं शकील अख्तर इस रिपोर्ट में।
चुनावी सभाएं और रैलियां, बिहार में इन दिनों चुनावी गतिविधियां जोरों पर हैं। बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए एक तरफ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी और साथ में कांग्रेस है।
नीतीश कुमार जिंदाबाद।
वहीं दूसरी ओर भाजपा, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियां हैं। चुनावी प्रचार की अगुवाई स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैकेज घोषित किया, उनको इससे भी बुरा लग गया। 1,65,000 करोड़ का विकास पैकेज को रोकने के लिए अब आपको मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि बिहार को विकास चाहिए। बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपयों से विकास की योजनाएं चाहिए भाई।
बिहार की जीत से मोदी की राजनीतिक शक्ति और भी बढ़ जाएगी और वो निजीकरण और आर्थिक सुधारों जैसे अपने एजेंडे पर किसी दबाव और हस्तक्षेप के बिना आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ भाजपा की हार होती है तो पार्टी के अंदर उनकी पॉलिसियों और कार्यशैली से नाखुश लोग उनके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। पटना के एशियन डेवलपमेंट शोध संस्थान के सहवाल गुप्ता कहते हैं कि बिहार का चुनाव दोनों ही पक्षों के लिए एक मुश्किल राजनीतिक परीक्षा है।
बिहार इलेक्शन नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं तो उनका न केवल अथॉरिटी घटेगा मगर बीजेपी के अंदर भी हम समझते हैं कि एक ऑलमोस्ट रिवोल्ट लाइक सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि उनका जो जिस ढंग से वो फंक्शन कर रहे हैं उसमें हमको लगता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उन लोगों को ऑटोनॉमी नहीं है। ऑलरेडी बिहार में जब नरेंद्र मोदी का इतना स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है तो बिहार में करीब करीब 7 एमपीज बीजेपी के किसी न किसी ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी पर नेगेटिव कमेंट्स किए हैं।
बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी असामान्य रूप से सक्रिय हैं। बिहार का चुनाव जीतना उनकी भविष्य की राजनीति के लिए अत्यंत अहम है। भाजपा नेता साबिर अली का कहना है,
एक तो सबसे पहले भारत को मजबूत करने के लिए उनको ताकत मिलेगी, उनके सोच को आगे बढ़ाने में उनको ताकत मिलेगी और इस देश में एक नई समीकरण जो मोदी जी चाहते हैं उनको एक ताकत मिलेगी। इसके वजह से दूसरे प्रदेशों में भी लोगों की सोच बदलेगी।
शिवानंद तिवारी लालू और नीतीश दोनों ही नेताओं के घनिष्ठ राजनीतिक साथी रहे हैं। उनका विचार है कि अगर राज्य में भाजपा की शिकस्त होती है तो बिखरा हुआ विपक्ष मोदी के विरुद्ध एकजुट होने लगेगा।
तो मोदी के खिलाफ जो है एक अलाइनमेंट यहाँ जो है शुरू होगा नेशनल लेवल पर। कांग्रेस आई, यहाँ की दोनों पार्टियाँ आई, बाकी जो एंटी मोदी एंटी बीजेपी अलग अलग स्टेट में जो पार्टियाँ हैं वो ग्रेविटेट होकर इस तरफ आएंगी।
लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बिहार पर 25 वर्ष तक शासन किया है। राज्य की नई पीढ़ी अब सरकार में परिवर्तन चाहती है।
तरक्की तो तभी होगा जब युवा पीढ़ी को कुछ करने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए तो जरूरी है कि सरकार को बदल के एक बार दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए।
हमें बस सुधार की जरूरत है, हमें बदलाव की जरूरत है। जातिवाद को हटाकर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना चाहिए, तबके के लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दर्जनों मंत्री, सांसद और आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों के साथ भाजपा दिन रात चुनावी अभियान में सक्रिय है। 5 चरणों के विधानसभा के चुनाव में केवल लालू और नीतीश की राजनीतिक किस्मत का ही फैसला नहीं होगा, इसके नतीजे भारत की भविष्य की राजनीति का भी रुख तय करेंगे। शकील अख्तर, BBC, पटना।
बिहार चुनावों पर हमने एक विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को शुरू की है। इस सीरीज में हम आपको अगले कुछ दिनों तक राज्य से जुड़े मिथकों और तथ्यों के बारे में बताते रहेंगे। दूसरी कड़ी में जानिए कि क्या नीतीश कुमार की छवि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को वोट दिला सकती है।
बूझिए ना बिहार को CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
क्या नीतीश कुमार की छवि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को वोट दिला सकती है?
कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। ये जरूर है, आज के सर्वेक्षणों के आधार पर देखें तो नीतीश कुमार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। अगर इस बात की जानकारी हासिल की जाए, लोगों से इस बात को पूछा जाए कि क्या किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, सभी के जहन पे एक ही नाम है, नीतीश कुमार का नाम।
लेकिन क्या ये लोग जो कि उनको पसंद कर रहे हैं, ये उन्हें वोट भी देंगे?
इस बात पे थोड़ी आशंका है। आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो जितनी लोकप्रियता किसी मुख्यमंत्री की होती है, किसी भी चुनाव में देखें, वो बिहार का चुनाव हो किसी अन्य राज्य का चुनाव हो, जितनी लोकप्रियता मुख्यमंत्री की होती है उतने वोट पार्टी को मिलते नहीं। हाल ही में के चुनाव में हमने देखा, 2010 के चुनाव में जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में 53% बिहार के लोग देखना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम है इस गठबंधन को सिर्फ 39% वोट मिले। इसी तरह से जब लालू यादव अपनी पॉपुलैरिटी के हाइट पे थे, जब वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, ऐसे समय में जब लगभग 30% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को उतनी वोट उस चुनाव में नहीं मिली। जदयू गठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता है नीतीश कुमार, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी लोकप्रियता नीतीश कुमार की आज दिखाई पड़ रही है, वोट उस अनुपात में नहीं मिलेंगे। और एक चिंता का विषय यह है कि नीतीश कुमार की जितनी लोकप्रियता 2010 में थी, आज वो लोकप्रियता गिरी है, उसमें गिरावट आई है। ये एक चिंता का विषय जदयू आरजेडी गठबंधन के लिए हो सकता है।
बूझिए ना बिहार को।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। गोमांस पर प्रतिबंध के आदेश को दोबारा लागू करने के अदालती आदेश के चलते भारतीय कश्मीर में पिछले कई महीनों से विवाद पर विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा घटना जम्मू के उधमपुर जिले में हुई है, जहां पुलिस का कहना है कि बलवाइयों ने श्रीनगर जा रहे एक ट्रक को आग लगा दी, जिसमें एक चालक और दो सहचालक थे। एक तो बच निकला, लेकिन दो लोग बुरी तरह से जल गए। जम्मू में कुछ संगठनों ने कश्मीर जाने वाली मालगाड़ियों के ब्लॉकेट करने की धमकी भी दी है, जिस पर जम्मू और कश्मीर के व्यापार संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
जम्मू के उधमपुर जिले में कश्मीरी ट्रक पर हमला होते ही घाटी में अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया है, और इस घटना के घटते ही अलगाववादियों और व्यापारी संगठनों ने सोमवार को बंद का आह्वान किया। पुलिस ने अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए और अलगाववादियों ने ऐसी घटनाओं के विरोध में आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है।
इससे पहले यहाँ इस खरमने आंगन में आग लग जाए, हम यहाँ के इन लोगों को कहना चाहते हैं, दिल्ली के इन कठपुतलियों के वह होश के नाखून ले और अपने इन बलवाइयों को, अपने इन गुंडों को रोके, और उससे पहले कि हालात इनके हाथ से निकले। और इनने पहले
दरअसल जम्मू में हिंदू राष्ट्रवादी विचार रखने वाले कई गुट कश्मीरियों की आर्थिक नाकाबंदी की धमकी देते रहे हैं। हालात पिछले हफ्ते उस वक्त खराब हो गए जब विधानसभा के स्पीकर कविंदर गुप्ता ने गोमांस पर प्रतिबंध के कानून पर बहस की अनुमति नहीं दी। इसके विरोध में एक निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने एमएलए होस्टल में गोमांस की पार्टी का आयोजन किया। इनकी इस हरकत पर जम्मू में हंगामा हुआ और आर्थिक नाकाबंदी की बातें फिर सामने आ गईं। उधमपुर में हुए हमले पर अलगाववादियों के साथ साथ जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के सभी व्यापार संगठनों ने एकजुट होकर इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं का मिलकर विरोध करने का प्रण लिया। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया,
कल को हो सकता है ऐसी हमें जो हमने डिमांड की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, हमको सिल्क रूट दोबारा खोला जाए। नॉट ओनली एलओसी, हम अपना पुराना व्यापार उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान तक करना चाहते हैं, तो तब जम्मू वालों को कश्मीर से गुजरना है और कोई रास्ता नहीं। एजेंसीज प्ले करना बंद नहीं करेंगे। यू शुड कीप इन योर माइंड सिक्योरिटी रिलेटेड सीक्रेट फंड्स इतने हैं कि ना तो पॉलिटिशियंस चाहते हैं, ना एजेंसीज चाहती हैं, ना फोर्सेज चाहती हैं कि यहाँ अमन अमान का माहौल बने। अगर कुछ सेक्शंस ने हमारी आइडेंटिटी और कल्चर को हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, और हमारा फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वासियों को कि उन सेक्शंस को हम प्रोटेक्ट हमेशा करेंगे, और एनी मूव बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट वील अपोज टू थिन एयर।
गौरतलब है करीब 100 वर्ष पहले बनाए गए गौमांस पर प्रतिबंध के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए निलंबित किया है, और इस बीच जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 3 जजों पर आधारित फुल बेंच बनाया है जो इस मामले का हल ढूंढेगा। लेकिन गोमांस का ये मुद्दा जहां एक तरफ कश्मीर में अस्थिरता का कारण बन रहा है, वहीं सत्तारूढ़ी गठबंधन बीजेपी और पीडीपी के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
स्वराज अभियान के तहत चल रही संवेदना यात्रा के अगले चरण में बीबीसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के कौशाम्बी जिले के गांव बिला दक्षिण पहुंचा। सूखे ने बुंदेलखंड को बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर इसके साथ ही यहां ये भी देखने को मिला कि आज भी लोग अपने ही कुछ गांववासियों से छुआछूत करते हैं। गांव की एक महिला ने अपनी इस परेशानी के बारे में खुलकर बात की। बीबीसी संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट।
योगेंद्र यादव सूखे के बारे में संवेदना जताने के लिए दक्षिण से उत्तर भारत के सफर पर हैं। मगर उत्तर भारत के जिले महोबा के जिस गांव में हम पहुंचे, वहां संवेदना का भी सूखा दिखाई पड़ा। बुंदेलखंड के गांव बिला दक्षिण की कमलेश और उनके पति शिवरतन पुश्तैनी तौर पर सफाई का काम करते रहे हैं, लेकिन गाँव की महिलाएं अब उन्हें छूना नहीं चाहती। कमलेश को इस बात का मलाल है कि आखिर इंसान होने के बावजूद ऐसा क्यों है।
जो ऐसी हमारी माताएं बहने हैं, तो है ये बच्चा है तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, तो उसको नवाएंगे, पानी का ना रहेंगे। अब हमारा ना ले, दरखास्त दिया था, सरकारी लगा था, तब से हम उसको चला लेंगे, तो उसकी चलाई में भी पानी भरती हैं। तुमको बुरा नहीं लगता है साहब? हम हमारे खून नहीं है क्या? हम भोजन नहीं करते हैं क्या? नहाते नहीं हैं?
गाँव में जब से सरकारी सफाई कर्मी तैनात हुए हैं, तब से कमलेश और शिवरतन के पास कोई काम नहीं। उनके पास बस एक ही काम बचा है, मुनादी का, यानी गांव में किसी का आगमन, बच्चे की पैदाइश या किसी की मौत का ऐलान। इसके एवज में अगर गांववासी इन पति पत्नी को कुछ दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो कई बार उनके घर चूल्हा जलाने को भी कुछ नहीं होता। दोनों के पास थोड़ी सी जमीन है, मगर पिछले 2 साल से वो भी प्यासी है। कमलेश की छोटी बेटी BA में है, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और 2 लड़के बाहर काम कर रहे हैं। मुझे पता चला कि संवेदना यात्रा की मुनादी का काम भी गांव में रामरतन ने ही किया है। इसके बावजूद कमलेश को कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके पति को इसका कोई पैसा मिलेगा। गांव उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं लगता। मैंने जब गांव की महिलाओं से पूछा कि लोग कमलेश से छुआछूत क्यों करते हैं, तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। हाँ, गांव की कई महिलाएं जो इससे पहले अपने दयनीय हालात के बारे में मुझे बताने को बेताब थीं, अब मेरे इस सवाल से कन्नी काट रही थीं। बुंदेलखंड का गांव बिला दक्षिण भी दूसरे साल बारिश न होने से सूखा है। जितना चाहिए उतना पीने को पानी नहीं। गांव के 4 तालाब सूखे पड़े हैं। जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी उन 43 हैंडपंपों का इस्तेमाल होता है जिनसे लोग पानी निकालकर खुद पीते हैं। इनमें भी पानी 150 फीट की गहराई में है। नतीजा ये कि तिल, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसल खत्म हो चुकी है। बिला दक्षिण से लौटते हुए मेरे मन में एक ही सवाल बचा रह गया है, क्या कभी कमलेश और रामरतन को सूखे हुए इस गांव के बाशिंदों से हमदर्दी की बूंदें नसीब होंगी। अजय शर्मा, BBC, गांव बिला दक्षिण, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश।
मुंबई में लोगों ने एक पाकिस्तानी लड़की के इलाज के लिए 13 लाख से ज्यादा रुपए जुटाए हैं। सबा अहमद नाम की ये लड़की उन सैकड़ों पाकिस्तानियों में से एक है जो हर साल इलाज के लिए भारत आते हैं। सबा अपनी आवाज़ खो चुकी हैं। सबा के इलाज के लिए सलमान खान के NGO बीइंग ह्यूमन ने भी 50,000 रुपए दिए हैं। एक रिपोर्ट के साथ अनुराग शर्मा।
मुंबई में सोमवार को जिस समय कुछ शिवसैनिक एक पाकिस्तानी नेता की किताब के विमोचन के विरोध में सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर पेंट पोत रहे थे, उसी समय मुंबई में ही एक पाकिस्तानी लड़की कई महीनों में पहली बार अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने देश जाने की तैयारी कर रही थी। 15 साल की सबा अहमद को विल्सन्स डिजीज है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के अलग अलग अंगों में तांबा जमा होने लगता है। इसके बाद मरीज का वो अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। सबा स्ट्रेचर पर मुंबई आई थी। सबा की मां नाजिया को पाकिस्तान में लोगों ने कहा था कि वो मुंबई में लोगों को ना बताएं कि वो पाकिस्तानी हैं, वरना उनसे अच्छा बर्ताव नहीं होगा। फिर उनका अनुभव कैसा रहा, नाजिया बताती हैं।
नहीं, बहुत प्यार देने वाले लोग हैं। मैंने वही समझा कि मैं बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी और कंट्री में हूँ। ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मेरा पाकिस्तान में अपने घर में ही। सब लोगों ने बहुत प्यार, सबा के लिए छुपा के खाना भी जैसे लोग मिलाते थे। ये नहीं है कि एक ही, उसकी हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब लोग सबा से मिलने आते थे और उसके लिए छुपा के खाना ले आते थे। बस ये देख के मुझे बहुत, कभी कभी तो मैं रो भी बैठती थी, कितने प्यार करने वाले लोग।
सबा के बीमार पड़ने के बाद पाकिस्तान में उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिला। दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ सो अलग, लेकिन सबा के मौसेरे भाई बहनों को भी यही बीमारी थी और उनका इलाज भी भारत में ही हुआ था। ऐसे में सबा को भारत ले जाने की सलाह दी गई। सबा को अप्रैल में पहली बार भारत लाया गया, लेकिन नाजिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाज का पूरा खर्च उठा सके। ऐसे में उन्हें मदद मिली ब्लू बेल्स नाम के NGO की संस्थापक शाबिया वालिया से। शाबिया कहती हैं,
अप्रैल में मुझे एक व्हाट्सएप आया था मेरे मोबाइल पर, जो एक रैंडम व्हाट्सएप था कि एक लड़की है जिसको इलाज की जरूरत है, वो विल्सन डिजीज से सफर कर रही है। उस लड़की की फोटो देखी और वो लड़की स्माइल कर रही थी हॉस्पिटल बेड पे भी लेटकर, तो मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट किया। मुझे उस वक्त इतना रजिस्टर नहीं हुआ कि वो कहाँ की है या जो भी। मैंने उसने उसकी मम्मी को फोन किया जो नंबर था, और उसकी माँ ने मुझे बताया कि वो एक सिंगल मदर है और वो 80,000 रुपीज लेकर बॉम्बे आई थी और उनको 2 लाख रुपए उनके बिल हो गए हैं जसलोक हॉस्पिटल में और उनको फंड की जरूरत है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कुछ 30,000-35,000 रुपए जमा किए और 2-3 दिन बाद उनको मिलने गई और तब से एक रिश्ता बन गया, एक जर्नी शुरू हुई।
मुंबई के जसलोक अस्पताल में सबा का इलाज करने वाली डॉक्टर आभा नगराल बताती हैं,
इस बीमारी में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एक बार मतलब स्टेबलाइज हो जाए तो फिर दवाइयाँ कंटिन्यू करते रहने पड़ती है मेंटेनेंस डोज में। धीरे धीरे उसकी आवाज अभी भी आ गई है, मगर टाइम लगता है, कुछ महीने साल भी लग सकता है।
सबा के इलाज का सबसे मुश्किल पक्ष है महंगी दवाई। नाजिया कहती है कि दवा की एक बोतल 1,70,000 रुपए की मिलती है। दवाई के लिए कुछ पैसे ब्लूबेल्स ने दिए हैं, अब कुछ विदेशी संगठनों से भी उन्हें मदद का भरोसा मिला है। सबा की मदद करने वाली शाबिया को अब रोज मदद की पेशकश के लिए फोन आते हैं, लेकिन उन्हें अब कराची से उस फोन कॉल का इंतजार है जब खुद सबा उनसे बात करें।
एक पाकिस्तानी लड़की के इलाज के लिए 13 लाख रुपए जुटाए गए। और अब एक नजर खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। दक्षिण अफ्रीका के हाथों पहले तो 2020 सीरीज और उसके बाद कानपुर में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 5 रन से हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कल इंदौर में दूसरा मैच खेलने मैदान में उतरेगी। अगर कल का मैच भी हाथ से निकला तो फिर भारत के लिए 5 मैचों की सीरीज को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल भारतीय गेंदबाज रन लुटाने में माहिर है। पिछले मैच में भी एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40.3 ओवर के बाद 4 विकेट खोकर 97 रन था, लेकिन 50 ओवर तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने 5 विकेट खोकर 303 रन बना डाले, यानी 9.3 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने 106 रन दिए। अब टीम में आर अश्विन भी नहीं है, जिन्होंने 4.4 ओवर में केवल 14 रन देकर 1 विकेट लिया था। वो चोटिल हैं, उनकी जगह हरभजन सिंह टीम में खेल सकते हैं। पिछले मैच में 47 रन देकर 2 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर अमित मिश्रा अपने प्रदर्शन से तो खुश हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा नहीं है कि वो कल खेलेंगे, पर उन्हें लगता है कि टीम ने हार से सबक लिया है।
सबसे अच्छी बात है कि आते ही परफॉर्म हो गया अच्छा, कोशिश ये रहेगी कि आगे जितने भी मैचेस हों अगर मैं खेलता हूँ तो इससे बेटर परफॉर्मेंस करूं। ये अच्छा हो गया कि पहला मैच हम हार गए हैं, उससे हमारे एरर का पता लग गया।
दूसरी तरफ अगर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने 104 रनों की शतकीय पारी खेली तो भारत के रोहित शर्मा ने भी 150 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें भी लगता है कि भारतीय गेंदबाज महंगे रहे।
आपको ये भी देखना चाहिए कि उनके सेट बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे और हमारा जो प्लान एग्जीक्यूशन था वो ठीक से हुआ नहीं। वो कभी कभी हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट आप ज्यादा दोष नहीं दे सकते बॉलर्स को क्योंकि ये पहला ही मैच है। आगे आगे देखेंगे हम किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं।
वैसे भारतीय टीम की समस्या बल्लेबाजी भी है, मध्यम क्रम चल नहीं रहा, जिसमें विराट कोहली और खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शामिल हैं। ऐसे में इंदौर में दक्षिण अफ्रीका के विजयी रथ को रोकना भारत के लिए आसान नहीं होगा। उधर कल से डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जहां शीर्ष वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल थाईलैंड की बुसानान ओंग बुमरुंग फान का सामना करेंगी, लेकिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत अजय जयराम से भिड़ेंगे। इसके अलावा पी कश्यप और महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा भी अपना दावा पेश करेंगी। वहीं अबू धाबी में शोएब मलिक के नाबाद 124 और मोहम्मद हफीज के 98 रनों की मदद से पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ आज से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 4 विकेट खोकर 286 रन बनाए।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
गोलीबारी और चाकू हमलों में कम से कम 3 इसराइली मारे गए हैं और 1 दर्जन के करीब घायल हुए हैं। नीदरलैंड के जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीते साल जुलाई में पूर्वी यूक्रेन में गिराए गए मलेशियाई विमान को रूस निर्मित विमानरोधी मिसाइल से निशाना बनाया गया था। यूक्रेन के प्रधानमंत्री आर्सेन यात्सेन्यूक ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने रूस समर्थक लड़ाकों के नियंत्रण वाले इलाकों से मिसाइल दागी थी। डच सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट के बाद नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने रूस से हादसे की आपराधिक जांच में पूरा सहयोग देने का आह्वान किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि दमिश्क में रूसी दूतावास पर हुआ मिसाइल हमला चरमपंथी कार्रवाई है। ब्रितानी सरकार 9 अरब डॉलर के उस समझौते से पीछे हट रही है जिसके तहत उसे जेलों के संचालन में सऊदी अरब की मदद करनी थी। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन ने कहा है कि वह अपने सालाना निवेश बजट में 1 अरब डॉलर की कटौती करेगी। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर का कहना है कि वह नौकरियों में 360 पदों की कटौती कर रही है। बीबीसी समाचार।
दिनभर कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।